स्टार्ट है ना था सर। पहले आप अपना नाम और आप डाइट में किस पद पर हैं अगर आप वो बता सकें।
मेरा नाम पंकज कुमार पटेल है, मैं डाइट में है सामाजिक विज्ञान फर्स्ट प्रवक्ता पद कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं डाइट एटा में था, अभी जल्दी ही जो है ये 10 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया है।
अच्छा अभी
उसके पहले मैं एटा में सर्विस दे चुका हूँ।
अच्छा एज अ
टीचर प्रवक्ता जो है ट्रांसफर लेके मैं यहाँ आया। अच्छा जल्दी आया
सर। आपका इस डाइट में कितना हद तक मतलब आप क्या कहते हैं शैक्षिक भूमिका निभाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका निभाते हैं, मतलब कैसा रहता है?
हम लोगों का जो कार्य दिया गया मैक्सिमम जो है शैक्षिक भूमिका में ही दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में जो है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए जो है विद्यालयों में जाते हैं, जैसे विद्यालयों में पठन पाठन को देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसा है पठन पाठन चल रहा है, क्या बच्चों की उपस्थित देखते हैं, कैसे बच्चों को प्रेरित किया जाए, कैसे अध्यापकों को प्रेरित किया जाए कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, बच्चे भौतिक रूप से विद्यालयों में अधिक से अधिक उपस्थित हो
जी।
और जो उनका पढ़ाने का मेथड तो क्या है उसके बारे में देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीच बीच में जो है परियोजना से राज्य परियोजना से जो है प्रशिक्षण होते रहते हैं, सेवारत अध्यापकों के जो है उनको भी हम लोग प्रशिक्षण लेते भी हैं देते भी हैं। अभी जो है 4 दिवसीय जो है प्रशिक्षण जो है सीमेंट इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें सारे डाइट प्रवक्ता लोग जो है एक एक ब्लॉक से एक एक लोग शरीक हुए थे
जी।
तो इस ढंग से है। और महीने में जो है 10 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन जो है करना रहता है
जी। सर आपके हिसाब से एक प्रवक्ता के हिसाब से मतलब डाइट के क्या मेन उद्देश्य रहते हैं, मतलब क्या गोल ऑब्जेक्टिव क्या आपको लगता है?
हमारे समझ से जो है प्रवक्ता के मेन रोल रहते हैं, जो यहाँ पर सेवा पूर्व प्रशिक्षण होता है, जो बच्चे आते हैं प्रशिक्षण लेने उनको जो है इस ढंग से तैयार करना कि जब वो बेसिक स्कूलों में जाएं तो बच्चों से उनका मैक्सिमम जुड़ाव हो सके, साथ ही साथ बच्चों को इस ढंग से शिक्षा दें कि बच्चे बगैर भयमुक्त होकर के जो है उनसे शिक्षा ले सकें, और उसके साथ ही साथ तमाम शिक्षा के अतिरिक्त अन्य तमाम गतिविधियां यहाँ कराई जाती हैं, जो शिक्षा विभाग की गतिविधियाँ होती हैं इसमें उनमें ट्रेंड किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ तो मान लीजिए जो क्लास चलती हैं इसके अलावा क्लास के अलावा जो अन्य सहभागी क्रियाएं होती हैं उसमें भी जो है उनको ट्रेंड किया जाता है। साथ ही साथ प्रवक्ताओं लोग जो समय समय पे जो है अध्यापकों की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें भी कैसे बच्चों से उनका जुड़ाव हो, कैसे किस मेथड से पढ़ाएंगे बच्चे जो है उनकी चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, इसके बारे में कुछ।
सर आपका और SCRT का एक प्रवक्ता और SCRT के कैसे संबंध होते हैं?
संबंध एक तरह से SCRT भूमिका जो है गाइड की भूमिका होती है, क्या क्या निर्देश जो निर्देश मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं और उसी के अनुसार जो है विभाग चलता है।
अच्छा सर आप उनसे जैसे क्या आपको उनसे कुछ रूप से कोई सहायता प्रदान की जाती है SCRT के उससे?
नहीं जो है हम वैसे डायरेक्ट तो नहीं प्रदान की जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है जैसे SCRT के थ्रू या राज्य परियोजना कार्यालय के थ्रू जो है जैसे बेसिक के टीचरों के लिए जो है बने बनाए हुए जो है लेसन प्लान आते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में जो है हस्तपुस्तिका आती है जिसमें जो है तमाम योजनाएं उनकी रहती हैं उनकी नीतियों के बारे में रहती हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ SCRT जो है बीच बीच में हम प्रवक्ताओं को यहाँ से बुलाती है जो है अपने यहाँ जो है वहाँ जो है प्रशिक्षण देती है
जी।
कुछ नया करने के लिए जैसे चाहे गणित की पुस्तक तैयार हो या सामाजिक अध्ययन की पुस्तक तैयार हो, हिंदी की पुस्तक तैयार हो, तो प्रवक्ताओं को बीच बीच में बुलाते कैसे उसको मॉडिफाइड किया जाए, क्या नई चीज़ों को जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें जो है।
सर अगर जैसे आप कुछ यहाँ पर कुछ समस्याएं फेस कर रहे हैं तो अगर SCRT तक वो बातें लेके जानी है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कैसे डायरेक्टली बात करते हैं कि एक सर के थ्रू या मैम के थ्रू?
मैक्सिमम जो है अपनी बातें जो है मैम के थ्रू ही पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे बॉस वही हैं। और कोई भी चीज़ जो है अगर प्रॉपर चैनल से जाता है तो उस बात में वजन ज़्यादा रहता है।
जी जी जी।
और नियम भी है अपने पास के थ्रू, अगर हो सकता है वो समस्या जो है यही निचले स्तर से ही समाधान हो जाए तो वहाँ ना पहुँचे।
जी सर, अगर मैं बात करूँ जो ये जिला शिक्षक अधिकारी होते हैं, क्या आपकी इनसे भी कोई संबंध या बातचीत है?
संबंध क्या, जैसे महीने के लास्ट शनिवार को जो है जी। जो बेसिक विभाग के जिसे हम BSA कहते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे प्राचार्य मैम के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक होती है
जी जी।
जिसमें हम लोगों के द्वारा जो 10 विद्यालय अनुसरण किए जाते हैं, ARP के द्वारा जो है 30 किए जाते हैं, SRG के द्वारा 20 किए जाते हैं, उनके बारे में जो चर्चा होती है। और जो राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी कार्य सौंपे गए होते हैं, क्या उसमें प्रगति है, उसके बारे में चर्चा होती है, और कैसे बेहतर समन्वय किया जाए इसके बारे में भी चर्चा होती है। अक्सर जो है प्रतिभाग करते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसी व्यस्तता आ जाती है कि BSA साहब नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अक्सर प्रतिभाग करते हैं। सारे BU रहते हैं, SRG रहते हैं तीनों, और सारे यहाँ के स्टाफ रहते हैं।
सर, आपके हिसाब से एक जो जिला अधिकारी है उनसे आप किस किस क्षेत्र में अगर सपोर्ट चाहें तो किस किस क्षेत्र में आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं जिससे जो ये आपके डाइट की प्रगति हो?
सपोर्ट तो खास करके जिला अधिकारी मतलब DMC मींस
जी जी जी,
खास करके यहाँ के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में अगर जैसे यहाँ की सुविधाओं के बारे में कहा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ की जैसे स्मार्ट क्लास अगर उनके थ्रू, तो हम समझ रहे हैं उनके थ्रू तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ये परियोजना के कार्यालय से हो, लेकिन जैसे स्मार्ट क्लास हो, भौतिक संसाधन जो कम है उसके विषय में सहायता, आर्थिक सहायता मिले, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग है यहाँ की उसके लिए बेसिक के क्षेत्र में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनसे सहायता की ज़्यादा उम्मीद करते हैं।
अच्छा।
और अन्य सहायता के लिए हमारा जो विभाग है वो तो पर्याप्त है
जी। सर, जैसे जो इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स होती हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और जो स्कूल सुधार कार्यक्रम होते हैं, तो सर उसमें क्या कहते हैं आपका क्या रोल रहता है?
देखिए, हमारा रोल एक जो है एक तरह से उनको सपोर्ट करने के, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको जो है सपोर्ट करने, कैसे उस कार्यक्रम को और विधिवत ढंग से कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है गार्जियन के, बच्चों के अभिभावक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक बच्चों के अभिभावक की भूमिका नहीं होती है तब तक बच्चे उस कार्यक्रम का लाभ सही से नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य होता है कि आप जो है प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से जो है आप जो है जुड़ें, भावनात्मक रूप से जुड़ें, जिससे कि आपके बातों को जो है अभिभावक जो गंभीरता से लें।
अच्छा सर, आप ये जो BRC होती है, BRC और CRC, इनका और आपका कैसा संबंध है, मतलब क्या आपकी बातचीत होती है, किस बारे में होती है?
लगभग संबंध तो सारे BRCOs से, BRC जो है मैक्सिमम हम लोग जो है अपने अपने ब्लॉकों से आवंटित हैं, उनकी BRCOs से संपर्क रहता है, BRCOs से बातचीत होती है, समन्वय लगभग ठीक ही रहता है, क्योंकि मीटिंगें भी होती हैं, खास करके ARP जो है BRC से ही आते हैं, तो समन्वय ठीक रहता है, उनके माध्यम से हमको जानकारियाँ मिलती हैं, कोई भी सूचना होती है उन्हीं के माध्यम से हम ज़्यादा सूचित सरलता से जो है हम पहुंचा पाते हैं
जी,
तालमेल बेहतर रहता है
जी। सर, आपका किसी जो बाहर अन्य स्कूल है उनसे कुछ कोलैबोरेशन है?
अन्य स्कूल
मतलब जो स्कूल्स होते हैं, जो
प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी और कॉम्पोजिट स्कूल्स जो है,
नहीं इनसे जो है
जी,
मतलब ऐसे आपका जैसे क्या कहते हैं इनसे कोई इंटरेक्शन है, बातचीत
मतलब
है?
जैसे आप स्कूल विजिट पर जाते हैं,
ब्लॉक में जो आपको एक एक ब्लॉक शायद दिया होगा
जी,
तो उनमें आपका कैसा इंटरेक्शन रहा है, क्या वो कोऑपरेटिव है या कैसे
है? यहाँ के बारे में मैं विशेष नहीं बता सकता हूँ।
अच्छा।
क्योंकि यहाँ भी हमको पिछले एक डेढ़ महीने पहले ही लाख आवंटित हुए हैं
जी, जी, जी।
तो अभी हमको उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन लगभग तालमेल बेहतर रहता है। चूँकि जब मैं वहाँ की अगर बात करूँ तो वहाँ मैं पहले भी जिसे जाना रहता था उसके पहले भी मैं सूचित कर देता था, हाँ, और साथ ही साथ ना भी सूचित कर तो भी हमको जो है विशेष अंतर नहीं मिलते थे।
अच्छा।
जिसे पूर्व सूचना से जाएं बगैर सूचना के जाएं लगभग हमको विद्यालय ठीक ठाक स्थिति में मिलते थे, और जो कुछ विद्यालय जो वाकई में पिछड़े हैं वहाँ की स्थिति खराबी है, और मध्यम विद्यालय जहाँ के खास करके ये समस्या वहाँ आती है जहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ समस्या आती है। पता लगता है कि बच्चे नियंत्रण ही नहीं है। मैं वहाँ बताऊँ, चार चार अध्यापक, चार ही है, पांच अध्यापक हैं एक प्राइमरी में, लेकिन बच्चे जो है 400-500 ऐसे बच्चे होते थे, तो वहाँ जो है क्लास को संभालना बड़ी समस्या हो जाती थी। इसके साथ ही साथ जो है वहाँ जो है शासन से निर्देश भी होता था कि जो है स्कूल को जो है दो शिफ्टों में चलाया जाए, एक शिफ्ट में जैसे एक से लेकर तीन तक बच्चों को या चार से लेकर पाँच तक ऐसे बच्चों को चलाया जाए, लेकिन वहाँ अध्यापकों के लिए भी बड़ी समस्या आती थी। एक ही वही अध्यापक जो है कितने घंटे जो है काम करें, ये समस्या आती है। और इस समय जो है सबसे बड़ी समस्या है जो है अध्यापकों की, किसी विद्यालय में जो है पर्याप्त अध्यापक हैं वहाँ छात्र संख्या बहुत कम है, हाँ, लेकिन है जहाँ अध्यापक होने चाहिए वहाँ अध्यापक हैं, छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, ये समस्या है।
अच्छा सर, कोविड की मैं अगर बात करूँ, कोविड टाइम में, तो कोविड टाइम में आपका और जो आपके ऊपर जो लोग हैं जैसे SCERT हो गई या आपके जो डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूट हो गए BRC CRC और जो ये जो स्कूल हैं जो आप जाते हैं जहाँ मॉनिटर करने, तो इनसे आपके कैसे बात, कैसे आप वार्तालाप करते थे, या जैसे स्कूल में आप मेंटरिंग करते हैं आप बता रहे, तो आप कैसे करते थे ये सारी चीज़ें?
नहीं तो देखिए कोविड के दौरान जो है जैसे जूम ऐप के जरिए सब कनेक्ट हो जाते हैं, वैसे कोविड के समय एक ऐप मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ऐप था उसी के माध्यम से, नहीं प्रेरणा ऐप नहीं था, उस के थ्रू कम लोग जुड़ते थे, तो मैं हर जैसे किसी विद्यालय का सपोर्टिव स्कूल विजन करना है तो मैं उसको उस ऐप खोल करके मैं कोड दे देता था, उसको मैं पहले ही बता देता था कल जुड़ना है, अगर आज ही जुड़ना है तो कम से कम जो है 4 से 5 घंटे या 6 घंटे पहले मैं सूचित कर देता था, क्या आपके पास समय है आज जुड़ने के लिए, नहीं तो पोस्टपोन कर देता था अगले दिन, उसके बाद जो है उनसे बात की जाती थी आधे घंटे 1.5 घंटे जैसे उनके पास समय रहता, कम से कम 1 घंटे कोशिश करते थे कि बात करने के लिए। और उस दौरान मैं ये कोशिश करता था बच्चों को जो है, आप कोविड के दौरान उनके घरों नहीं जा सकते थे तो आप अधिक से अधिक जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है ऑनलाइन शिक्षा देने का काम जो है बच्चों को करिए, साथ ही साथ बच्चे के जो होमवर्क हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मंगाइए और उसका जांच करके जो है बच्चों को
दीजिए। ठीक है, और सर आपका एज प्रवक्ता कॉल मतलब डाइट के इसमें जो फाइनेंशियल वो रहते हैं, इसमें क्या आपका कोई रोल रहता है, जैसे आपको कोई रिसोर्स वगैरह चाहिए रहेगा तो वो सब के लिए कैसे आप फाइनेंशियल, क्या आप वहाँ रहते हैं उस दौरान?
नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स के थ्रू क्या, जैसे कोई प्रोग्राम या प्रतियोगिता करानी होती है तो जिस प्रवक्ता को वह सौंपा जाता था उस दायित्व जो है वह उसको मैनेज करता था, और मैम के माध्यम से उसके लिए बजट आवंटित किया जाता है
जी। अच्छा सर, क्या कहते हैं ये डाइट में जो जैसे डेली रोज़ाना कारक जो भी कार्य होते हैं या मेंटेनेंस के लिए, तो क्या डाइट में आपके पास पीएन, लाइब्रेरियन और ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लूँ तो जैसे विज्ञान ये अपने आपके लैब हो गए और कंप्यूटर लैब, तो क्या इन सब की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर?
इसकी स्थिति तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की डाइटों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है
जी।
आप लाइब्रेरी देखी होंगे, लाइब्रेरी भी देखे होंगे, लैब भी देखे होंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ संसाधनों की बहुत कमी है। लाइब्रेरी में कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है लेकिन ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे अब कंप्यूटर की बहुत ज़रूरत है, अब जैसे बच्चों को जो है थ्योरी तो आप पढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बच्चों को कंप्यूटर पर बैठकर ही बताया जा सकता है। ये बच्चों को फिलहाल मुझे कंप्यूटर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने साथी प्रवक्ता से जब बात करता हूँ, बच्चों से भी बात करता हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, तो उसकी जो है बहुत ज़रूरत है। इसे काफ़ी चीज़ें हैं जो है, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए और भी काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। भौतिक संसाधन जो है वाकई में डाइटों पर बहुत काफ़ी कम है, जो सरकार की तरफ से हम लोगों का अपेक्षा है कि इसको जो है बदलते समय के अनुसार जो है इसको अत्याधुनिक किया जाना चाहिए।
सर, एक प्रवक्ता के रूप में, अभी जैसे आप एक प्रवक्ता हैं, आप क्या सोचते हैं कि आगे चलकर आपके करियर में किस हिसाब से एक ग्रोथ या डेवलपमेंट आप उम्मीद करते हैं कि होंगी?
देखिए, मैं जो है इसके पहले बेसिक में भी सर्विस करके आया हूँ, इंटर कॉलेज में भी सर्विस करके आया हूँ, और मैं जिनसे हर आदमी की लालसा होती है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है ऊंचे पद पर जाने की, जो मैं एलटी ग्रेड में नौकरी करके आया हूँ, बेसिक में भी करके आया हूँ, तो एज प्रवक्ता मैं अभी जल्दी ही इस सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन मैं कोविड के दौरान जो है ज्वाइन नहीं कर पाया, 1.5 साल डिले ज्वाइन किया, तो एज मेरी सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जिले में एक पद है इसलिए ज्वाइन किया, साथ ही साथ मुझे जो है अपने अध्यापकों के बीच में जाकर काम करने का मिलेगा, इससे जो है मैं भी जो मेरे बेसिक में अनुभव रहे हैं उसको मैं अपने अध्यापकों के बीच में साझा कर पाऊंगा, और साथ ही साथ मैं बच्चों को जो है और अधिक से अधिक शिक्षा देने में मदद करता हूँ। जहाँ तक मेरे करियर की बात है, सबसे ज़्यादा मैं जिसे हम लोगों का जो पद है, हम लोगों के पद और वेतन जो है हमारे दृष्टि से जो है और साथ ही प्रवक्ताओं की भी दृष्टि जो है उचित नहीं है, क्योंकि माध्यमिक का भी शिक्षक जो है हमारे ग्रेड पे का है, और जो हाई स्कूल पास आईटीआई को पढ़ाते हैं 5400 ग्रेड पे के हैं, हम लोग ग्रेजुएट पास बच्चों को पढ़ाते हैं 4800 ग्रेड पे के हैं, लेकिन वही इंटर पास बच्चों को बीए में बीएससी में जो है 6000 ग्रेड पे पढ़ा रहे हैं, जो कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ 5400 के ऊपर ग्रेड पे मिल रहा है
जी।
लेकिन यूपी में प्रवक्ताओं को जो है कम मिल रहा है, और जहाँ तक सर्विस की सिक्योरिटी की दृष्टि, जैसे काफ़ी दिन हो गया ज्वाइन किए, 2 साल बाद जो है अस्थायीकरण का लेटर जारी हो जाना चाहिए
जी।
लेकिन अभी अस्थायीकरण का लेटर नहीं ज्वाइन, काफ़ी प्रवक्ता इसके से हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, इन प्रवक्ताओं को 4-4 वर्ष हो गए ज्वाइन किए, लेकिन अभी विभाग द्वारा अस्थायीकरण के लिए जो है लेटर नहीं जारी किया गया, अभी भी वो लोग अस्थायी रूप से यहाँ सेवारत हैं, कभी भी सरकार नोटिस देकर निकाल सकती है, जबकि हम लोग लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं, 2 साल बाद जो है परीक्षा काल के बाद नियमता जो है उनको अस्थायीकरण का जो है लेटर जारी कर देना चाहिए, हम लोगों के पद के साथ अस्योरिटी है।
सर, आपके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिस करियर ग्रोथ के लिए, क्या आप लोग के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है?
हाँ, बीच बीच में रखा जाता है, जैसे SGRT गए थे वहाँ रखा गया था, कैसे सपोर्टिव सुपरविजन में क्या और बेहतर कर सकते हैं, अध्यापकों को जो है आप जब जाएं फील्ड में तो आप जो भी सूचना मांगें वो सहजता से दे सकें और आनाकानी ना करें या वैसे भी असहयोग ना करें, तो इसके बारे में एक प्रोग्राम हुआ। बीच बीच में विषय से संबंधित प्रवक्ता बुलाए जाते हैं, वहाँ विषय से संबंधित भी ट्रेनिंग दी जाती है।
अच्छा सर, आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी दूसरे डाइट के प्रवक्ता से बात करनी हो या अपने ही जो आपके डाइट अयोध्या में है, तो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ दो डाइट को मिलके कुछ करना हो, तो आपको अगर एक कम्युनिकेशन करना हो तो आप कैसे करते हैं?
कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन मैक्सिमम फोन के माध्यम से ही होता है,
जैसे व्हाट्सएप
से, क्योंकि हम लोग जो है विषय वाइज जुड़े हुए हैं, एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता से जो है अपने विषय का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, साथ ही साथ एक मंडल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिससे उस मंडल या ये जैसे लखनऊ मंडल बना हुआ है, फिलहाल उसमें लिमिट पूरी हो गई, मैं नहीं जुड़ पाया हूँ, उस लखनऊ मंडल में मान लीजिए आरी बगल कई मंडलों के प्रवक्ता जो है उसमें जुड़े हुए हैं, तो कोई भी सूचना होती है उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कम्युनिकेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर कोई सहयोग भी लेना होता है किसी डाइट से तो लिख के भेज दिया जाता है, जिस डाइट का कोई प्रवक्ता हो प्लीज जिस नंबर से कॉन्टेक्ट करें, उसके बाद में वॉइस कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी हो कम्युनिकेट कर लेते हैं।
सर जैसे आप पढ़ाते हैं तो मोस्टली शायद आप चौक और बोर्ड या मार्कर या व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं, क्या आप और भी कोई तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए पीपीटी हो गई या कोई ऑडियो क्लिप दिखा दिया या कोई यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया, क्या आप वैसे भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के दौरान?
बिल्कुल, जो है जैसे मैंने बताया कंप्यूटर के विषय में पीपीटी के विषय में मेरा नॉलेज थोड़ा वीक है, लेकिन हमारे साथी काफ़ी प्रवक्ता हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं। और जैसे यूट्यूब के माध्यम से जैसे हुआ, जैसे कोई चीज़ नहीं बच्चों को समझ में आ रही है तो अगर वह यूट्यूब पर उससे संबंधित कोई मटेरियल होता है, बेहतर वीडियो होता है, तो मैं बच्चों को वह लिंक शेयर कर देता हूँ या क्लासरूम में स्वयं दिखाता हूँ, तो इस माध्यम से जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ।
सर जो ये आपका डीएलएड करिकुलम होता है तो बच्चों को वो करिकुलम को अच्छे से मतलब पढ़ने के लिए जो पाठचार्य होता है उसको मतलब जो उनका लेसन प्लान है जो भी, तो जो पढ़ाने के लिए आप कोशिश करते हैं उनको क्या किस टाइप के रिसोर्सेज का मतलब आप देते हैं, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बुक हो गया या ये सब, तो ये क्या क्या रिसोर्सेज आप उनको हेल्प करते हैं?
रिसोर्सेज मतलब टेक्स्ट बुक तो हो ही गया, साथ ही हम लोगों के जो लेक्चर होते हैं नोट्स होते हैं पीडीएफ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा कर दी जाती है, बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें जो है सारे प्रवक्ता भी जुड़े हैं, उसमें जो है वो कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है उससे संबंधित पीडीएफ डाल दी जाती है, तीस ढंग से जो है करने की।
सर क्या कहते हैं, जैसे अब जैसे बच्चों से और काफ़ी लोगों से बात करके पता चला कि बच्चे डीएलएड के बाद टेट देते हैं या कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट में ही नौकरी कर लें, एग्ज़ाम ना दें, तो क्या आप ऐसे प्रवक्ता बच्चों को उन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करते हैं, जैसे टेट एग्ज़ाम आता है तो क्या आप उनको यही पढ़ाई के दौरान ही हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि उनकी भी तैयारी होती रहे साथ में?
हाँ बिल्कुल, जो है जैसे बच्चों को मान लीजिए कोई सत्र है, जैसे अभी दो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे जो है दो महीने लेट एग्जाम हो रहा है, कोर्स समाप्त हो गया था, बच्चों का भी मन कम लग रहा था, उस दौरान जो है बच्चों को जो है टेट से संबंधित मटेरियल दिए जा रहे थे, जो है टेट के ही के सिलसिले में लेक्चर लिए जा रहे थे, और साथ साथ हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कोशिश ये भी करते हैं कि उनको थोड़ा जो डीलेट का सिलेबस है वो बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और लेकिन हम लोग पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि थोड़ा ब्राइटनेस पढ़ाया जाए जिसे आने वाले भविष्य में जो है टेट या सुपर टेट या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित जो है बच्चों को मटेरियल मिलता जाए, और साथ साथ इंडिकेट भी कर देते हैं कि ये चीज़ फला परीक्षा में आई है या यहाँ से इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, खास करके अगर ये बच्चे चूँकि डीलेट कर रहे हैं तो इनका मेन फोकस पहले टेट और सुपर टेट होता है, तो उनको पढ़ाते समय ये इंडिकेट करते हैं, खास करके यह बताते हैं कहाँ से पढ़ा जाए कि आपको जो है टेट में पास होने में आसानी होगी, मार्क अच्छे लाने में आसानी होगी, और सुपर टेट कैसे निकाला जाए इसके बारे में भी बीच बीच में टिप्स देते रहते हैं।
सर क्या आपका कोई रोल रहता है जो ये इन सर्विस ट्रेनिंग आते हैं जो टीचर्स, क्या आपका इनके ट्रेनिंग प्रोसेस में कोई रोल रहता है?
हम लोगों का रोल नहीं रहता है, अक्सर जो है ये जो है एससीईआरटी से ही निर्धारित होता है या राज्य परियोजना कार्यालय से ही निर्धारित होता है।
जी सर ये जो आपका डाइट है क्या इनका कोई कोलैबोरेशन रहा है किसी हायर यूनिवर्सिटी से या किसी एनजीओ से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ हो गया, तो क्या डाइट का कोई ऐसा कोलैबोरेशन रहा है?
मेरी समझ से तो ऐसा नहीं रहा है।
जी नहीं, जैसे यहाँ पर एनजीओ आई थी मलेशिया से और अभी संपर्क
अभी जो जल्दी में हाँ ऐसे आते रहते हैं
जी,
ऐसे जो है बीच बीच में आते रहते हैं।
सर एज अ प्रवक्ता आप एस सी आर टी से अगर मैं ये बोलूं कि आपकी कुछ जैसे कुछ नीड्स हैं एज अ प्रवक्ता तो वो क्या रहेंगे?
सबसे ज़्यादा मैं एस सी आर टी से गुजारिश करूंगा कि हमारे पद और वेतन मान में चेंजित किया जाए, और साथ ही साथ जो डीएलएड का सिलेबस है इसको चेंजित किया जाए। डीएलएड का सिलेबस बहुत शॉर्ट है और डीएलएड का सिलेबस जो है एक बार पुनः रिवाइज हो। साथ ही साथ जो अगर एससीईआरटी के थ्रू अगर हो सकता है तो मैं ये चाहूँगा कि जो इसमें बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेते हैं जो एज मेरिट से आते हैं इसको जो है इंटरेस्ट बेस्ड बनाया जाए, क्योंकि उसमें जो है ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे नकल करके आए हैं, कैसे आए हैं, मेरिट वाले आए हैं, लेकिन है कि जब इंट्रेंस बेस बच्चे आएंगे तो बेहतर बच्चे आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे।
ठीक है सर, आपको लगता है अभी हमारा इंटरव्यू तो गया, लेकिन अगर आप और कुछ हमें बताना चाहें जो कि हमारे रिसर्च और स्टडी में यूजफुल रहे।
लगभग मैं समझता हूँ सारी की सारी लगभग चीज़ें सारे पहलू आपने छुआ है
जी।
तो वैसे कोई चीज़ जो है दिमाग में नहीं आ रही है
जी। ठीक है सर, ठीक है।